दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समात फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामाई, आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समात फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हरगिज मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवीए उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, आज जुमेरात है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकेंगे नखमाए सहर और बस्मे दीवान। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम फादर कैसर फेरोज की जेर निगरानी तैयार किए गए हैं। तो आइए समाप्त फरमाइए आज के प्रोग्राम।
हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका सातवां बाब 20-26 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ए कदूस बाप, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी गर्ज करता हूँ जो इनके कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, जिस तरह कि तू ए बाप मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में एक हों, ताकि दुनिया ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों, जिस तरह के हम एक हैं, मैं इन में और तू मुझ में, ताकि ये वहदत में कामिल हो जाए, और ताकि दुनिया जान ले कि तूने मुझे भेजा है और कि जिस तरह तूने मुझे प्यार किया है उसी तरह इन्हें भी प्यार किया है। ए बाप, मैं चाहता हूँ कि वो भी जिन्हें तूने मुझे बख्शा है जहाँ मैं हूँ मेरे साथ हूँ, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, इसलिए कि तूने दुनिया की तकवीन से बेशतर ही मुझे प्यार किया। ए आदिल बाप, दुनिया ने तुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना है, और मैंने तेरा नाम इन पर जाहिर किया है और जाहिर करूँगा, ताकि वो प्यार जिससे तूने मुझे प्यार किया है इन में हो और मैं इन में हूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज मोमिनीन, क्या आप जानते हैं कि यीशु का जलाल क्या है? ये यीशु की चमक दमक है या उसके असमत का नूर है? जी नहीं, यीशु का जलाल उसकी फरोतनी, सबर और उसके प्यार के पीछे पोशीदा है। रूह की नेमतों का हर वस उसके जलाल की शुआ है। यूहन्ना ने उसे देखा और गवाही दी कि हमने उसका जलाल देखा। वो सिर्फ शक्ल की तब्दीली का हवाला नहीं दे रहा और न ही यीशु के मुर्दों में से जी उठने के मुतालिक कह रहा है, बल्कि यीशु की अदना चरनी और जालिमाना सलीब के मुतालिक भी कह रहा है। इन वाक्यात में मोहब्बत का जलाल नुमाया तौर पर आया होता है, जहां बेटे ने खुद को वाज़े जलाल से बिल्कुल खाली कर दिया और आदमी की शक्ल में अपनी अजमत का जौहर पेश किया। यीशु ने ये जलाल हमें अनायत किया। बाप और बेटे का रूह हम पर नासिल हुआ। हमें ये एहसास दिए जाने का मकसद ये नहीं कि हम इसकी नुमाइश करें या उसे खुद की शोहरत के लिए इस्तेमाल करें, बल्कि इसलिए कि हम एक होकर खुद को मुख्तलिफ खिदमात के लिए पेश करें, आपसे खिदमात के लिए मिलते रहें और दूसरों को एहसास बख्शने का अज़्म करें। इन्हीं रूहानी असूलों के मुताबिक यीशु ने बाप से गुजारिश की कि वो इसी इत्तफाक और रफाकत के मुताबिक, जो मुकद्दस तसलीस के तीनों अकानीम में है, हम पर ये इम्तियाजी औसाफ बरसाए خدا کی محبت وہ پیمانہ ہے جس سے کلیسیا کو پرکھا جا سکتا ہے، وہی ہمیں اپنی ابدی شبی میں ڈالتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے خداوند یسوع، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہم نا اہل لوگوں کو اپنے آپ پر ایمان لانے کی ترغیب دی، تو نے اپنی محبت کے باعث ہمیں اپنے خادم بنا لیا۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ تو نے ہمیں پاک کر کے اپنے روحانی بدن کے رکن بننے کے لیے آراستہ کیا، ہمیں مقدس تثلیث کی محبت میں مستحکم کیا۔ ہم تیری تمجید اور توصیف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کلیسیا میں عملی اور زندہ یکجہتی سے رہنے کے لیے قوت بخش۔ آمین۔
آدابر سامعین، دعائیں محبتیں اور نیک تمنائیں قبول کیجیے۔ میں ہوں آپ کی میزبان ارم عمران اور میرے ساتھ ہیں جی انکل دیوان۔ پیش خدمت ہے آپ کا اپنا پروگرام بزم دیوان۔
سنائیے سامعین، کیسے حال احوال ہیں آپ کے؟ بھائی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خداوند کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہیں جی، ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں قبول کیجیے۔
جی ہاں دوست، اور ہماری دعا جو ہے ہمیشہ آپ کے لیے یہی ہے کہ ہمارے دوست ہنستے رہے، مسکراتے رہے اور آپس میں خوشیاں بانٹتے رہیں۔
جی ہاں بالکل، اور خوشیاں بانٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی دوست آپ کا ناراض ہے تو اس کے پاس جائیں، اس سے ناراضگی کو ختم کریں۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو یقیناً اس پہ آپ کو جو ہے وہ اس سے معذرت کر لینی چاہیے، اور اگر اگلے کی بھی غلطی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو درگزر کر دیا جائے، کیونکہ اسی طرح محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ جو آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے آپ بھی اسی سے محبت کا اظہار کریں، یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ بات تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر آپ سے محبت کا اظہار نہیں بھی کر رہا تو آپ اس سے بھی ہمیشہ محبت سے ہی بات کریں،
چاہے انکل وہ آگے سے آپ کو برا بھلا ہی کہتا رہے۔
شاباش بھائی، برا بھلا اس نے کیا کہہ لینا ہے بھائی، جب آپ کسی کو برا پڑا نہیں کہیں گے ہیں جی، تو کوئی دوسرا آپ کو برا پڑا کیوں کہے گا؟ وہ کسی گھر میں نا ساس کی اور بہو کی لڑائی بہت زیادہ ہوتی تھی۔
اچھا،
وہ بڑے پریشان تھے، ہوئے 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 بڑے پریشان۔ تو جو بہو تھی نا وہ کچھ زیادہ پریشان تھی، ایک دفعہ کسی سیانے کے پاس چلی گئی۔
اچھا،
سیانا کہتا ہے کہ تم نے ایک کام کرنا ہے، یہ لو یہ 12 لاچیاں لے لو۔
12
لاچیاں؟
اچھا اچھا،
وہ الائچی۔ ہاں
جی جی، لاچیاں۔
ہاں 12 لاچیاں لے لو، تو جب تمہاری ساس تم سے غصے ہو نا، تمہارے ساتھ بولنا شروع کر دے، تو ایک الائچی جو ہے نا تم نے اپنی داڑھ کے نیچے رکھ لینی ہے اور زور سے اس کو دبا کے رکھنا ہے۔
اچھا،
جب تک تمہاری ساس چپ نہ کر جائے تم نے وہ لاچی منہ سے نکالنی نہیں ہے۔
اچھا،
اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ساس اس کی گھر جب وہ پہنچی تو ساس بڑک اٹھی، کہاں گئی تھی تم، اتنی دیر لگا کے آ گئی ہو؟ اس نے چپ کر کے الائچی پرس سے نکالی، منہ میں رکھ لی۔ ساس بیچاری 15-20 منٹ بولتی رہی۔ اب اس کو اس نے سیانے نے بولا ہوا تھا کہ الائچی منہ سے نہیں نکالنی،
بالکل
وہ بولی نہیں۔ اب گھر کے ساس بیچاری چپ کر گئی۔ اب اس نے آئندہ یہ طریقہ ہی بنا لیا کہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ جب بھی ساس نے بولنا ہے اس نے الائچی جو ہے نا وہ مطلب دانت کے نیچے رکھ لینی۔ اور ظاہری سی بات ہے جب اس نے بولنا ہی نہیں آگے سے تو ساس بیچاری کتنی دیر بولتی۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ساس کو بھی اپنے نا غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔
اچھا،
ایک دن کہتی ہے کہ بہو رانی میں تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہوں اور تمہاری بہادری ہے کہ تم چپ کر کے سنتی رہتی ہو، تو آئندہ میں تمہارے ساتھ کبھی غلط بیانی نہیں کروں گی یا غلط لفظوں کا استعمال نہیں کروں گی۔
یہ تو انکل
پجی پجی سیانے کے پاس گئی۔
اچھا،
کہتی ہے جی آپ کی تو جو وہ آپ نے کر کے دیا تھا نا دام لاچیوں پہ، انہوں نے تو بڑا کام دکھایا۔ تو وہ سیانا کہنے لگا انہوں نے کام نہیں دکھایا، اصل میں تمہاری چپ نے کام دکھایا ہے۔ تو اگر بندہ آگے سے چپ کر جائے، درگزر کر دے، تو ظاہر سی بات ہے جھگڑا خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔
لیکن انکل ہمارے ادھر کی تو یہ روایت ہے، خاصیت مانی جاتی ہے کہ جب تک پتھر کا جواب آپ اینٹ سے نہیں دو گے تب تک آپ کو کوئی بہادر ہی نہیں کہے گا۔
شاباش، میں کہتا تھا میری گرامر کمزور ہے۔ اور اینٹ کا جواب پتھر سے ہوتا ہے، پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں ہوتا۔ वो ना करो, वो मैट्रिक में किसी को आ गया जी मतलब शेर लिखने के लिए, तो उसने कह दिया जी बहरे जुल्मात में घुड़ा दिए दौड़े हमने।
अच्छा
हाँ जी, अब ये भी समझ नहीं आएगी,
नहीं आएगी,
वो घोड़े दौड़ा दिए होता है, दौड़े घुड़ा दिए नहीं होता। इसी तरह ईंट का जवाब पत्थर से होता है, पत्थर का जवाब ईंट से नहीं होता।
अच्छा चलिए अंकल, बहुत शुक्रिया कि आज आपने मेरी ये जो गलती थी उसको दुरुस्त कर दिया। लेकिन अंकल मफहूम तो समझ में आया ना आपको?
हाँ मफहूम तो समझ में आ गया, वो इसके लिए तो बहुत सारे मुहावरे हैं, जैसे नैले पे दैला है जी, या मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये बहुत सारे मुहावरे हैं, और मुहावरों में तो वैसे भी अंकल दीवान को बहुत ज्यादा जो है ना
महारत
महारत
हासिल
है। हाँ
जी,
और अक्सर लोग तो कहते हैं अंकल दीवान तुम्हारी ये महारत है, कहाँ का जाके मतलब जो होता है मुहावरा तुम कहाँ
जाके
लगाते
हो। सही कह रहे हैं। अच्छा अंकल चले, ये तो बात हो गई अखलाकियात की, और मतलब ये कि हम अगर अपने मुआशरे को या खुद को दुरुस्त करना चाहते तो खामोशी जो है वो सबसे बेहतर हथियार है अंकल। लेकिन कुछ मसले ऐसे भी होते हैं जिन पर आवाज उठाना बनती है। अगर आजकल देखा जाए तो ये जो गुर्दा फरोश हैं या फिर जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो बेचे जाते हैं या चोरी निकाल लिए जाते हैं, ऐसे ग्रोह या ऐसा घिनौना काम करने वालों के खिलाफ तो आवाज उठाना बनती है ना।
शाबाश, चोरी कैसे निकाल लिए जाते हैं? मैंने कौन सा रात को गुर्दा निकाल के अपने ड्राज में रखा होता है, या आंखें निकाल के मैंने जो है अटैची केस में बंद की होती है कि रात को चोर आया चुप करके उसने उधर से गुर्दा निकाला और ले गया। चोरी कैसे निकाल लिए जाते हैं?
अरे अंकल आपको नहीं पता, ऐसी खबरें आजकल बड़ी आम हो रही हैं, और ऑपरेशन के लिए मतलब डॉक्टर्स, एक आम मरीज है उसको पेट में दर्द हुआ, उसको ऑपरेशन का कह देते हैं, हालांकि दर्द बहुत मामूली सा है, और उसे बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उसका ऑपरेशन करके गुर्दा निकाल लिया जाता है, और उसे बताया तक नहीं जाता, उसकी इजाजत तक नहीं ली जाती है।
शाबाश, ये नवा कारोबार शुरू हो गया। ये वैसे मुझे समझ नहीं आती कि आज हमारी इस दुनिया को होता क्या जा रहा है। यकीन जानो, पहले ये सुना जाता था कि गुर्दे जो है ना वो मतलब सस्ते दामों लोगों से खरीद लिए जाते हैं, है जी, कि मतलब बेचारे मजबूर होते हैं कि 50,000 उसको दिया। हालांकि ये कानून जो है मौजूद है कि अगर किसी ने कोई अजा जो है ना अपना ट्रांसप्लांट कराना है या चेंज करवाना है, तो उसका जो करीबी जो ताल्लुकदार होता है ना, जो रिश्तेदार होता
बिल्कुल,
है
बिल्कुल,
वो उसके लिए कुर्बानी देता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये आम सी एक रवायत चल पड़ी है ना, लोगों की मजबूरियों को खरीदना, और अक्सर ये पट्टों पे काम करने वाले जो होते हैं ना बेचारे, उनके साथ ये बड़ी ज्यादतियां होती हैं।
लेकिन अंकल मुझे ये बताए ना कि इस तरह करने से, या आप जो कह रहे हैं जो पट्टों पर काम करते हैं इनके साथ ज्यादती होती है, इंसानियत किस कदर गिर रही है ना।
हाँ जाहिर सी बात है भाई, इंसानियत क्या गिरनी है, अब तो यकीन जानो सड़कों का ये हाल हो गया है कि नेरे में बंदा लाइट चली जाए ना तो जो मर्जी गिर पड़ता है, जहाँ मर्जी पड़े हमें गटर में गिर पड़े।
अंकल आप किधर की बात किधर लेके जा रहे हैं।
हाँ अच्छा चलो ठीक है, इंसानियत ये हमारी जो है ना, असल में ऐसा ऐसा हम इखलाकियात को तो यकीन जानो भूलते ही जा रहे हैं, अब तो ये सिलसिला ही खत्म होता जा रहा है। अब मैं वाकया सुनाता हूँ, हमारे ये पाकिस्तान का ही वाकया है।
अच्छा,
कोई बंदा था बहुत नामी ग्रामी बंदा था, उसका ना जब वो गया ऑपरेशन थिएटर में,
अच्छा,
तो उसका दिल जो है ना उसका मसला था।
अच्छा,
डॉक्टरों ने कहा जी इसका दिल जो है ट्रांसप्लांट हो जाए, या फिर वो एक डिवाइस मिलती है बाहर से वड़े किसी मुल्क से, वो ला के लगा दें तो ये दोबारा जिंदा हो सकता है, या इसके कुछ 4-5 साल और निकाल सकता है।
सही। अच्छा अंकल आपका वाकया जो है ना वो मुझे बड़ा लंबा लग रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि इस लंबे से वाकये के पीछे हम लोग जो है ब्रेक लेना भूल जाएं। तो दोस्तों हम अंकल दीवान का जो वाकया वो जरूर सुनेंगे, लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। दोस्त ये रेडियो वेरितास एशिया की उर्दू सर्विस है, और इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं बस में दीवान जी। तो दोस्तों वक्फे से पहले अंकल जी आप हमें एक वाकया सुनाने वाले थे जो पाकिस्तान का ही है।
हाँ जी, वो मैं वक्फे से पहले बता रहा था कि एक कोई नामी ग्रामी आदमी था, तो उसको दिल का मसला था, तो डॉक्टरों ने कहा जी इसका दिल जो है ना अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए
जी
तो ये 2-4 साल और निकाल सकता है। उसके बच्चों ने जी बड़ी मेहनत की, बड़ी तगोदो की, पता नहीं कहाँ कहाँ से पता किया।
अच्छा
है जी। उनको ना पता चला जी किसी सरकारी अस्पताल में कोई मरीज है।
अच्छा।
तो उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, यानी दिमागी तौर पे वो कॉमे में चला गया हुआ है।
हाँ हाँ।
और किसी वक्त भी उसके सांस बंद हो सकते हैं।
अच्छा।
वो चले गए, उसके बेटे को, उसके रिश्तेदारों को उन्होंने बड़ा लालच दिया।
हाँ हाँ।
तो वो बंदे का बेटा आया, उन्होंने पता नहीं लखा रुपया उसको कह दिया, टेंशन ही कोई नहीं थी उनको।
अच्छा।
इतना पैसा था।
हाँ हाँ।
तो बच्चे ने कहा, उसके लड़के ने कहा, जो गरीब आदमी का लड़का था जिसकी ब्रेन डेथ हो गई हुई थी, कि भाई जिस तरह आपको ये एहसास है ना कि अगर आपके वालिद साहब के दिल जो है ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो वो बच जाएंगे, इसी तरह मुझे भी अल्लाह ताला के घर में फुल उम्मीद है
जी,
कि अगर अल्लाह ताला ने मेरे वालिद साहब को बुला लेना होता तो कब का बुला लिया होता।
बिल्कुल सही।
ब्रेन डेड है, जब तक वो जिंदा है भाई मैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं कर सकता।
बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है ना अंकल, कितनी अच्छी बात है ये।
हाँ जी, लेकिन ये अमीर लोग, खैर सारों को तो मैं नहीं कहता, अमीर लोगों की ये खसलत में शामिल होता है, वो समझते हैं कि शायद दुनिया की हर चीज जो है ना वो पैसे से खरीद सकते हैं।
बिल्कुल अंकल, लेकिन पैसा जो है हर जगह पर काम तो नहीं ना आता है।
हाँ जी, लेकिन कई जगह पे काम आता है, और बाद में आजकल ये गुर्दे ट्रांसप्लांट कराना, ये वो, ये भी काम चल रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी का बड़ा दौर है आजकल।
अच्छा।
हाँ जी, जिसके जी चाहता है वो, मतलब बूढ़ा होता ही नहीं है, जाता है प्लास्टिक सर्जरी करवाता है। बल्कि एक दिन मैं पढ़ रहा था, एक बंदे ने
जी
अपनी जिंदगी में कोई 500 तो कितनी प्लास्टिक सर्जरियां करवाई हैं।
अल्लाह, तो अंकल उसके मुंह पे बचा क्या होगा?
जहरी सी बात है। अब नहीं, बड़ा खूबसूरत तस्वीर मैंने देखी उसकी, बड़ी खूबसूरत, वो जहाँ से थोड़ा सा ये जिल्द लटकती ना।
हाँ हाँ।
उधर से वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के फिर जवान का जवान हो जाता। बल्कि मेरे साथ बड़ी टेंशन हो गई।
क्या
मैं
हो गया?
तो बहुत परेशान हुआ, काफी अरसे पहले की बात।
अच्छा,
है।
ओहो हो, क्या हो गया अंकल?
होना क्या था, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा यार 2 लाख रुपया चाहिए मुझे।
2 लाख रुपया?
हाँ जी। मैंने, मेरी कमेटी निकली हुई थी, मैंने कहा चल यार दोस्तों पे 2 लाख कौन सी बात है, कहता है यार मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मैंने उसको 2 लाख दे दिया। मैंने कहा करना क्या? कहता है मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवानी है।
चले, 2 लाख में उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई?
हाँ जी। बस उसने क्या प्लास्टिक सर्जरी कराई, मेरा 2 लाख रुपया डूब गया।
तो उसने वापस नहीं किया?
वापस क्या किया, मुझसे अब पछाना ही नहीं जा रहा कि वो दोस्त है कौन जिसको मैंने 2 लाख रुपया दिया था।
अरे वाकई अंकल, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। कि चलो, इनके घर का पता तो होगा ना आपके पास?
ओहो, घर का पता अब उधर जो मर्जी फिरता रहे। अब मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी वो अक्रम घर पे है, वो अक्रम ही बाहर निकल के कह रहा होता है, नहीं अक्रम तो अभी बाहर निकला।
कल मुझे तो बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ।
बस अफसोस मुझे क्या, मेरा तो 2 लाख डूब गया। 2 लाख रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती।
सही कह रहे हैं अंकल। खैर अंकल, देखे ना, अब इसी तरह के वाकयात आपकी तो मिसाल आज हमने सुनी ली है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के मामला में फंस जाते हैं और अपने जो है वो पैसे लुटा बैठते हैं।
हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और ये जो है ना, ये सिलसिला आजकल जो है, मतलब ये अजा की पैबंदकारी का और ये इस तरह सिलसिले जो चले हुए हैं, ये वाकई हमारे लिए एक कलमिए से कम नहीं है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। और वो लोग जो गरीब होते हैं, या भी आपने कहा है जो भत्ता खोर होते हैं, या
भत्ता खोर नहीं, पट्टे पे काम करने वाले,
मेरी बात तो पूरी आप सुनते नहीं।
अच्छा चलो, भत्ता खोर जो होते हैं उनकी बात कर लो।
नहीं अंकल, अब आप अपनी बात करें।
हाँ जी, जो भट्टे पे काम करने वाले होते हैं, बेचारे गरीब लोग होते हैं, मजबूर लोग होते हैं। मैंने बड़ी बारी जाके देखा है, वो यकीन जनो भट्टे पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और जब उनसे पूछो तो पता चलता है कि वो उस जगह से छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने जो है ना, मालक ने उनको पैसे दे दे के वो बाकी कहते हैं उसको, कर्जा दे दे के अपना गुलाम बनाया होता है।
बिल्कुल बिल्कुल।
और जब उन्होंने किसी दूसरे पट्टे पे जाना होता है ना, तो वो अगले पट्टे वाला जो है ना, वो उसका पिछला कर्जा उतार देता है और अपने पास उनको गुलाम रख लेता है, और सवेरे शाम उनसे काम लेता है। ऐसे लोग जो है ना, इनको फिर बुला फिसला के कुछ लोग जो है ना ले जाते हैं कि चल ठीक है, एक को गुर्दा जिंदगी के लिए बड़ा होता है, तू दूजा गुर्दा जो है निकलवा दे तो तुझे पैसे भी मिल जाएंगे, तेरा कर्जा भी उतर जाएगा। तो वो लोग बेचारे जो है ना मजबूर हो गए तो ऐसे कामों में जो है होते हैं।
वो तो ठीक है अंकल, लेकिन वो तो गुर्दा दे के भी नहीं आजाद हो पाएंगे।
जहरी सी बात है, मतलब एक सोच ही होती है ना बंदे की कि 50-60 हजार रुपया मिलेगा। अब गुर्दे की कीमत 50-60 हजार रुपया, 50-60 हजार रुपए की मोटरसाइकिल नहीं आती।
अंकल आप गुर्दे को मोटरसाइकिल के साथ तो मत मिलाएं।
मोटर वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि गुर्दे की या किसी की आंख की कीमत इतनी कम हो गई है कि अब मतलब मसला ही कोई नहीं है किसी बंदे के लिए, जिसको मर्जी वो ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो चोरी की बात है,
सही,
ये जो किसी के पेट के दर्द, पेट में दर्द हुआ वो, और कई तो डॉक्टर अनजाने में अगले बंदे के पेट के दर्द का मसला बढ़ा देते हैं। वो बंदा था पेट के दर्द के साथ ना डॉक्टर के पास गया,
अच्छा
उसने ऑपरेशन किया, उन्होंने कहा ठीक है जी, वो घर आया फिर पेट दर्द ना खत्म हुई,
अच्छा।
वापस गया उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो वो कहने लगे माफी चाहते हैं,
हाँ।
आपके पेट में जो है ना डॉक्टर साहब अपना रुमाल भूल गए हैं, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। वो फिर ऑपरेशन,
अच्छा।
किया फिर चला गया वापस,
अच्छा।
पेट दर्द फिर खत्म ना हुआ,
अच्छा।
फिर वापस आ गया डॉक्टर, फिर डॉक्टर कहता है माफी चाहते हैं अल्ट्रासाउंड किया उसने, असल में ना वो अंदर कैंची आपके पेट में रह गई। जब तीसरी बार ऐसे हुआ ना, उसने डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब मेरी एक गुजारिश है आपसे, ऐसा करें कि आप मेरे पेट पे टांके ना लगाइएगा, जिप लगा दीजिए कि जो चीज आप भूलें जब दिल करे निकाल ले, जब दिल करे रख ले।
सही कह रहा था बेचारा कि अंकल आप खुद सोचे, एक बंदा जिसका टांके जो है बार 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 खोले जो, उसका क्या हाल होगा। खैर दोस्तों यही पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्त पे का, कहीं मत जाइएगा हम अभी हाजिर होते हैं। दोस्त ये रेडियो वेरितास एशिया की उर्दू सर्विस है और इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं बसमे दीवान। जी दोस्तों आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह मुख्तलिफ अज़ा खुदावंद ताला ने हमें अता किए हैं और हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे अनासर भी हमारे माशरे में जन्म ले रहे हैं जो इन अज़ा की पवेंदकारी करते हैं और ब्लैक में इन्हें बेचते हैं और ऐसे गरीब और नादार लोगों के साथ धोखाधही करते हैं जो कि इस तमाम काम से बिल्कुल बेखबर होते हैं। अच्छा अंकल बड़े तो जो हो गए सो हो गए, मजदूर तबका है या क्या है या जो भी हैं, इस सारे जाल में फंस जाते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए होता है, लेकिन बच्चे तो किसी तौर पर भी, मतलब उनको क्या पैसे की जरूरत है या क्या उनकी ऐसी जरूरतें जिनके लिए उन्हें गुर्दा बेचना पड़े, लेकिन बच्चों के साथ इस तरह की ज्यादती की जा रही है कि उनके गुर्दे जो है वो निकाले जा रहे हैं। अब आप सोचे कि किस इंतहा तक हम लोग पहुंच गए।
हाँ जी बिल्कुल, और ये बच्चों को अक्सर ये जो अगवा लोग कर लेते हैं, अब तो ये बड़े बड़े माफिया बने हुए हैं, नेटवर्क बने हुए हैं। हैं जी मेरे पास एक पुराना दोस्त था मेरा जान पहचान वाला, कराची से आ गया तो इधर ना वो किसी दरबार वगैरह पे बैठा बूठा दोस्त के घर से लड़के निकला हुआ था,
अच्छा।
एक दिन मेरे पास आ गया, कहता है दीवान क्या बताऊं यार मेरे साथ बहुत ज्यादती हो गई है,
अच्छा।
और मैंने कहा क्या ज्यादती हो गई है तेरे साथ,
हाँ।
कहता है यार उधर से मैं आया था घर से लड़के, इधर मेरे पास कोई आसरा नहीं था, एक बंदे के पास रह गया, उसने मुझे कहा जी इस्लामाबाद में एक नौकरी है तो करनी है तो मेरे साथ आ जाओ,
अच्छा।
मैंने कहा चलो ठीक है, उधर जाके उन्होंने कहा जी आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट के लिए लेके गए क्योंकि उन्होंने कहा जी किसी ऐसे बंदे के घर में नौकरी करनी है जो कहता है जी पहले मेडिकल टेस्ट हो तो फिर ही मेरे मुलाजम हो,
अच्छा।
कहता है मेडिकल टेस्ट के लिए ले गए, उधर जाके मुझे नहीं पता चला कब उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया, जब मेरी आंख खुली तो मैं एक क्वार्टर में पड़ा हुआ था और मेरे पेट में दर्द हो रहा था,
अच्छा।
और जब मैंने उठ के देखा दुखा पास ही मेरा एक दोस्त जो उधर ही बना हुआ था वो बैठा हुआ था,
हाँ।
उसने कहा यार तेरे साथ तो ये काम हो गया, तेरे एक गुर्दा काट लिया उन्होंने। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार जो कुछ भी हो गया तेरे पास चल मैं कर करा के तुझे पैसे देता हूँ कुछ,
हाँ, हाँ,
तू चुप करके ऐसा कर, तेरी मेहरबानी घर वालों के साथ लड़ाइयाँ होती रहती हैं,
हाँ।
तू घर निकल जा, अब इन माफिया के चक्कर में पड़ने से इनको कौन ढूंढेगा। उसने एक दो जगह दरखास्त भी दी थाने में,
हाँ।
मगर अफसोस की बात ये होती है कि अक्सर कानून नाफज करने वाले इदारों में भी कुछ काली पेड़े होती हैं जो उनके साथ मिली होती हैं।
बिल्कुल, और अक्सर ऐसी होती है।
वो बंदा खैर चला गया जी गुर्दा शुर्दा कटवा के, اب خدا جانے کس حال میں، لیکن یہ ہے کہ اس کی ادھی زندگی تو بکار ہو گئی نا۔
صحیح بات ہے انکل۔ اچھا انکل، یہ بڑا اچھا روایت بھی کہہ سکتے ہیں، رواج بھی ہے، اور بڑی اچھی قدر بھی ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں اپنی اپنے اعضاء، جیسے گردہ ہو گیا، آنکھیں ہو گئی، دل ہو گیا، وہ اپنی مرضی سے یہ لکھت کر دے دیتے ہیں، لکھت کر کے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ جو ہے وہ اندھوں کو دے دی جائے ہماری آنکھیں، یا کسی ایسے شخص کو دے دی جائیں جو اس کے حقدار ہیں۔ وہ تو طریقہ چلے سمجھ آتا ہے ایک ڈونیٹ کرنے کا، لیکن جو زبردستی کسی سے یوں لیا جا رہا ہے اور پھر انہیں معاوضہ بھی نہیں دیا جا رہا، یہ تو غلط چیز ہے۔
ہاں جی، معاوضے کے عوض تو ویسے ہی کوئی اپنے اعضاء کو بیچنا غلط ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کی، کسی عزیز کی، کسی دوست کی جو ہے مدد کرنا چاہتا ہے۔ ویسے تو ڈاکٹروں کا خیال ہوتا ہے کہ جی مطلب ایک گردے سے بھی انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے، تو اگر اس طرح کسی کی زندگی بچ سکتی ہے تو زندگی بچانا جو ہے اس سے بڑا اور کام ہو کیا سکتا ہے۔ وہ زیدی صاحب نے شعر لکھا تھا نا کہ سینے سے میرے زہر اترنے نہیں دیتے، سینے سے میرے زہر اترنے نہیں دیتے، زندہ رہیں وہ لوگ جو مرنے نہیں دیتے۔
صحیح۔
تو کسی کو زندگی دینا، نئی زندگی دینا، کسی کو موت کے منہ سے نکال کے لانا، یہ تو ایک کیا کہنا چاہے کہ بڑے ثواب کی بات ہے نا۔
بالکل،
بڑی اخلاقی طور پہ بڑی عمدہ بات ہے۔
لیکن انکل میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ جہاں پر اتنی زیادہ ترقی کر رہا ہے، آگے کو بڑھتا جا رہا ہے، جدید ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہے، وہیں پر ہم لوگ ان جرائم میں بھی بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔
اخلاقی طور پہ ہم جو ہے نا بہت پستی کی طرف جاتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اخلاقی طور پہ جو ہے نا اپنے آپ کو اپ گریڈ، وہ ہوتا ہے نا ونڈو اپ گریڈ کرتے ہیں،
جی جی،
اسی طرح ہمارے دماغ کی ونڈو جو ہے نا، ہمارے اخلاق کی ونڈو،
بالکل
وہ بھی اپ گریڈ ہونے والی ہو گئی ہے۔ ہمیں اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آئندہ آنے والے نسلوں کو جو ہے نا ایک اچھا معاشرہ دینے کے لیے خود اچھے بننا پڑے گا، نہیں تو کل کلام کو کیا کہیں گے کہ ہمیں کیا معاشرہ دیا جہاں پہ ملاوٹ ہے، جہاں پہ یہ گردہ فروشی ہے، جہاں پہ یہ چوری لوگوں کے اعضاء نکال لیے جاتے ہیں، جہاں پہ یہ قانون شکنی عام ہے۔ تو اس کے تدارک کے لیے یقیناً، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جان سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہوتی، تو ایسے جرائم جو انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہوتے ہیں اس کے تدارک کے لیے جو ہے نا ضرور کوئی نہ کوئی قانون اور سخت قسم کا قانون بنانا چاہیے۔
بالکل، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور اس طرف توجہ دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی جی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان ارم عمران اور انکل دیوان کو اجازت دیجیے۔
ہے جو پڑے دیوار